सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि माया बहिर्योद् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानन्द भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ॐ नमः पार्वती पतेर हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में प्रवचन के इस क्रम में हम लोग भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं, जिस ग्रंथ में तीन चीजों का निरूपण किया गया है। पहला है वैराग्य, दूसरा है बोध और तीसरा है भक्ति। बहुत पहले कई सालों से वैराग्य का निरूपण हो गया, अब हमें क्या चाहिए? बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए। किसका ज्ञान चाहिए? तो जीव जगत और ईश्वर का ज्ञान। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? ये जो संसार दिख रहा है इसकी वास्तविकता एक्चुअलिटी क्या है? जो ईश्वर है उस ईश्वर का भी वास्तविक स्वरूप क्या है? जब तक इन तीनों के स्वरूपों का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक हम संसार में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से उलझे ही रहेंगे। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से हम संसार में उलझे ही रहेंगे। सच बता रहा हूं, कहीं न कहीं हमारे भीतर दीनता भी बनी रहेगी। जब तक हम अपने आप को ब्रह्म रूप, ईश्वर को भी ब्रह्म रूप ही नहीं समझेंगे, तब तक हम एक उपाधि को छोड़ करके दूसरी उपाधि और दूसरी उपाधि को छोड़ करके तीसरी उपाधि ग्रहण करते रहेंगे। संसार की हमारी निवृत्ति कभी हो ही नहीं पाएगी। भाई देखो, अभी हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ हैं, मन में तमन्ना आती है सन्यासी लोग क्या हैं? बड़े सुखी हैं, शांत हैं, तो क्या बन जाएं? सन्यासी बन जाएं। अरे कभी कभी यहां तक लगता हमसे अच्छे तो पशु हैं, नहीं लगता? कभी कभी पशुओं को कभी नींद की गोली खानी पड़ती है क्या? स्वाभाविक सोते हैं, स्वाभाविक उठते हैं, और कल क्या खाना है, कहां जाना है, उसकी भी कोई चिंता? तो निश्चिंतता हमें है कि पशुओं की है? तो लगता है कि मनुष्य से अच्छा तो क्या है? पशु ही बन जाना अच्छा है। ऐसे ही मान लो पशु बनने की इच्छा न करो तो कम से कम कहते हो कि इंद्र बन जाए बहुत बढ़िया है, भगवान मतलब विष्णु बन जाए अच्छा है, ब्रह्मा बन जाए अच्छा है, तो हम एक उपाधि को छोड़ करके कौन सी, भाई हम लोग मिडिल में है, ध्यान देना कहाँ है, मध्य में है। मनुष्य कहाँ है, मध्य में है। मनुष्य के ऊपर जो योनि है वह योनि किसकी है, देव योनि, और मनुष्य के नीचे जो योनि है वह पशु योनि, वृक्ष योनि, इसमें जान लो। लेकिन है सारी योनियां, और सारे शरीर जितने भी दिखते हैं सब कल्पित ही हैं। हमें सुख दिखता है वहां, लेकिन वास्तव में सुख है, ये तो संसार का नियम है। गरीब आदमी धन में सुख देखता है, गरीब आदमी कहां सुख देखता है, धन में, और धनी आदमी ईश्वर कहां, धन के त्याग में सुख देखता है। भाई यदि धन में ही सुख होता तो जैनियों के जितने तीर्थंकर हुए हैं सब के सब क्या हुए हैं, राजा हुए हैं। हमारे गौतम बुद्ध भी क्या थे, लेकिन त्याग दिया कि नहीं त्याग दिया, तो उनको सुख कहां दिखता है, त्याग में दिख रहा है। और जिसके पास है नहीं उसको सुख कहां दिख रहा है। अरे भाई आप ध्यान देना, बड़ी संसार की एकदम सब की बात है। हमारे पास गाड़ी नहीं है तो मैं सोचता हूं गाड़ी मिल जाए तो बहुत सुखी हो जाऊंगा। क्या मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। उससे गाड़ी बंबई में सबके पास ही हो गई है लगभग, लेकिन फिर भी मेरे पास नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि एक गाड़ी खरीद लूं। चलो कोई भी बात नहीं, सेकंड हैंड ही खरीद लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था करते हैं, तो गाड़ी हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। सही है कि नहीं बताओ। अच्छा आपके पास गाड़ियां हैं, इन आप लोग क्या जब कहीं कंपनी पिकनिक प्लेस में जाते हो या कहीं गांव में जाते हो तो क्या बैलगाड़ी पे बैठ करके आपको क्या मिलता है? कभी शायद गाड़ी पे बैठ करके आपने फोटो नहीं खिंचाया होगा, क्यों खिंचाया है, लेकिन बैलगाड़ी पर बैठ करके पक्का फोटो खिंचवाते हो। अब फोटो खिंचवा करके पूरे परिवार वालों को शहर में जाकर के दिखाते हो कि मैं कहां बैठा था। अब बैलगाड़ी पर बैठने का आपको जो आनंद मिलता है ना, वह आनंद शायद कहां, उस गाड़ी में नहीं मिलता। ऊंट पर, घोड़े पर बैठ करके जो आपको सुख मिलता है और जो फोटो खिंचवाते हो वह सारे मोहल्ले को दिखाते हो, लेकिन शायद गाड़ी पर बैठ करके आप फोटो खिंचवा करके किसी को दिखाते नहीं होगी, क्योंकि अब आपको सुख वहां नहीं दिखता है। आपको सुख कहां दिख रहा है, त्याग में दिख रहा है। कहां दिख रहा है, त्याग में। अरे कोमल बिस्तरों पर सोने का न, जिसके पास नहीं है उसको तो ये सुख लगता है, लेकिन जिसके पास है न वह किसी घास के मैदान में यूं हाथ पांव फैला करके लेट करके फोटो खिंचवाता है, और उसको वहां सुख जो मिलता है ना, वह सुख शायद बिस्तरों में मिलता नहीं। बताओ सुख हमारा हमेशा जहां है वहां नहीं दिखता है। हम हमेशा या तो ऊपर सुख देखते हैं अथवा कहां सुख देखते हैं, नीचे देखते हैं। जबकि जैसे ही यहां सुख नहीं है ऐसे न ऊपर सुख है और न कहां सुख है, नीचे ही सुख है। इसलिए न ऊपर जाने की इच्छा करो न नीचे जाने की इच्छा करो। और जब तक ईश्वर को भी अपने से अलग मानते रहोगे तब तक हमारे में ईश्वर बनने की इच्छा हो जाएगी। लेकिन ईश्वर बनकर के भी हम सुखी हो जाएंगे क्या, कभी कभी देखना। अरे भगवान को इतना सुख होवे तो बताओ अपना लोक छोड़ करके अवतार लेकर के कितना वो करना पड़ता है बताओ। तो सुख तो बल्कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है उतना ही बड़ा व्यक्ति क्या हो जाता है, अशांत और दुखी होता जाता है। इसलिए सुख तो किसी योनि में है ही नहीं। सुख कहाँ है बोलो भाई, त्यागे न एक के कहाँ है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन, तो कहाँ है, त्यागे न एक के। कब सुख है, त्याग कर देने से। त्यागेन एके अमृत तत्व मानसु, अमरता की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति तो कहां से हो सकती है, त्याग से ही हो सकती है। कैसे होगी त्याग से, सुषुप्ति में गहरी नींद में जो सुख मिलता है वह सुख किसका है, धन का, पत्नी का, पुत्र का, कर्म का, बिस्तर का। यहां तक सुषुप्ति में शरीर का भी बोध नहीं रहता, किसका, सुषुप्ति अवस्था में इस शरीर का भी, इस शरीर को भी हम छोड़ देते हैं तब हमें जाकर क्या मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है, ये अनुभव है। इसलिए जहां कुछ बनोगे वहां दुख उठाना पड़ेगा, तो उस समय जानना जैसे जीव सृष्टि कल्पित है वैसे ईश्वर भी क्या है, कल्पित ही है। इसलिए ईश्वर बनकर के भी क्या करोगे, इसलिए बनना कुछ नहीं है बल्कि जो है उसको जानना है। हम क्या है, जो है उसको हमें क्या करना है, जानना मात्र है। और जानते ही आप क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। और फिर कुछ बनना नहीं है, जो कुछ बनना हो तो कल्पित है। स्वप्न में बूढ़े व्यक्ति बन गए, जवान बन गए, और जैसे जग गए तो क्या बुढ़ापे का दुख होगा क्या, अथवा जवानी का सुख होगा क्या? क्योंकि जवानी और बुढ़ापा दोनों मेरे ऊपर क्या थे, कल्पित थे। ऐसे मेरे अपने शरीर के ऊपर यह सारा संसार क्या है, कल्पित है। इसलिए कुछ बनना नहीं है। और सारे जितने नाम रूप है ना, सब मेरे ऊपर ही प्रतिभासित हो रहे हैं, मेरे ऊपर दिख मात्र रहे हैं। इसलिए कुछ बनना नहीं है, सब बने हुए हम ही हैं। ये जानना मात्र है। यह क्या करना है, तो जानना, जीव को जान लो। हम क्या है, जीवो ब्रह्म, क्या है, जीवो ब्रह्मेव। जो जीव है वह कौन है, ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। और ये जगत जो दिख रहा है ना, वह कैसा है, श्लोका अर्धेन प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी, जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है उसको भगवान भाष्यकार कहते हैं। हम आधे श्लोक में कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव ना परह, जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं। और ये जो जगत है वह कौन है, मिथ्या है, रस्सी में दिखने वाले सर्प की तरह है, सीपी पे चांदी की तरह है, कपड़ों में कुर्ता पैजामा आदि वस्तुओं की तरह है, लेकिन सूत ही एकमात्र क्या है, सत्य है। फिल्म में लड़का लड़की स्त्री पुरुष नदी तालाब बाघ, लेकिन सब प्रकाश की किरण है, क्या है, फिल्म में सब क्या है, प्रकाश की किरण की सत्ता के सिवा वहां कोई न नदी है, न कोई अग्नि है, न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, सब क्या है, जितने वस्त्र दिख रहे हैं सब क्या है, सूत ही है। तो जो कुछ दिख रहा है सब कुछ क्या है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसके ऊपर जो नाम रूप है वह सब क्या है, मिथ्या है। तो महाराज ये नाम रूप दिख क्यों गया, तो बताया अज्ञान के कारण है। किसके कारण दिखा, किसके कारण दिखा भाई, अज्ञान के कारण, स्वाभाविक है। मृग मरीचिका का जल दिखता नहीं, दिखता है। अब जिसको किरणों का ज्ञान नहीं है, रेत में रिफ्लेक्शन का ज्ञान नहीं है, वह तुम किरणों की चमक को देख करके क्या समझ लेगा बेचारा, जल ही समझ लेगा, नहीं समझ लेगा। सूर्य यहां था, अभी यहां था, अभी यहां आ गया। जिसको साइंस का ज्ञान नहीं है वह क्या समझेगा, सूर्य गति कर रहा है, उसको थोड़ी लगेगा पृथ्वी गति कर रही है, वो तो तर्क उल्टा करेगा। यदि पृथ्वी घूम रही होगी तो क्या होगा, हमारे घर का दरवाजा इधर था, कल किधर हो जाना चाहिए था, इधर होना चाहिए, लेकिन इधर दरवाजा नहीं होता है, तो बताओ पृथ्वी गति कर रही है क्या। देखो स्वाभाविक है, लेकिन जिसको ज्ञान है वह क्या बताएगा, नहीं नहीं पृथ्वी क्या कर रही है, गति कर रही है, और सूर्य क्या है, स्थिर है। ऐसा बताएगा, नहीं बताएगा। अरे आजकल एक मेरे किसी ने बताया, आजकल एक नई टेक्नोलॉजी सिद्ध हो रही है, जब आप अभी विमान कैसे उड़ता है, ऐसे उड़ता है ना, अब नई खोज चल रही है कि कोई भी विमान सीधे नीचे से ऊपर जाएगा, कहां, स्पेस में। अब पृथ्वी 24 घंटे में एक बार तो क्या करती है, घूम लेती ना, 12 घंटे में एक चक्कर तो क्या करती है, लगाती नहीं लगाती है। तो क्या होगा, जब पृथ्वी घूमते घूमते वहां भारत आ जाएगा, तो वहां से विमान नीचे उतर जाएगा, बस ये हो जाएगा। आजकल चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, सही बता रहा हूं, ऐसा नहीं मैं कल्पना नहीं बता रहा, ये खोज चल रही है। कल हो सकता है इसी तरह की आप यात्रा करोगे, कैसा होगा, यहां से विमान सीधे कहां जाएगा, एकदम स्ट्रेट सीधे ऊपर स्पेस में। अब पृथ्वी घूमती रही है ना 12 घंटे में, आ जाएगा वहां, जैसे अमेरिका से विमान ऊपर गया, और जब घूमते घूमते उस विमान के नीचे क्या जाएगा, भारत आ जाएगा, तो ऊपर विमान कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। आप कब सब बचेगा, फ्यूल का खर्चा है, खर्चा हाँ चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, ये नहीं आश्चर्य है, हो सकता है 10 साल के बाद यही सिस्टम लागू हो जाए। कभी आपने सोचा था क्या इतना सब कुछ हो जाएगा? लेकिन इतना हो गया ते भी हो सकता है, क्योंकि एक नियम ते भी है ही ना। चलो जो भी है, तो हम बताते हैं कि अज्ञान ही क्या है, कारण है इस जगत का। किसका कारण है? अज्ञान ही जगत का कारण है। यदि ज्ञान हो जाए ना तो जगत की सत्ता कहीं दिखेगी नहीं, तब क्या दिखेगा? ब्रह्म की सत्ता दिखेगी। अब अज्ञान कैसे है, प्रैक्टिकली बताएं क्या बताएं? एक मुंबई में तो बोल ही सकते हैं, मुंबई के लोग तो फ्रैंक होते हैं, नहीं इतना संकीर्ण विचार वाले नहीं होते ना मुंबई के लोग, फ्रैंक होते हैं। देखो एक 18-20-22 साल का बच्चा जब किसी मार्केट में जाता है तो उसको कुछ भी न खरीदना हो तो भी उधर जाता है जिधर लेडीज गारमेंट बिकते हैं, नहीं और कुछ न खरीदना हो तो भी उस कपड़े को पूछेगा, उसको छुएगा, जबकि देखना उस कपड़े में सूत के अलावा दूसरी कोई सत्ता है क्या? सूत के अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं है, ध्यान देना। लेकिन फिर भी उसको सूत नहीं दिख रहा है, उसको उस कपड़े में क्या दिख रहा है? एक आकर्षण दिख रहा है। अखबार में पेपर के अलावा दूसरी कोई चीज है ही नहीं, कागज है, लेकिन कागज में भी किसी की तस्वीर दिख गई तो उस तस्वीर को क्या करेगा? किताब के ऊपर लगा करके फिर कवर चढ़ाएगा। लेकिन उस तस्वीर में उसको क्या दिख रहा है? कागज नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है? रंग नहीं दिख रहा है, उसमें क्या दिख रहा है? स्त्री पुरुष अथवा कुछ और दिख रहा है। तो स्त्री पुरुष वहां है क्या? कोई एक अज्ञान से ही वहां स्त्री पुरुष ने क्या कर लिया है? कल्पना कर लिया है। इन वास्तविकता क्या है? कागज है। ऐसे ही संसार में भी यदि देखा जाए कि एक ब्रह्म की सत्ता के सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, जो हमने अनेक नाम रूप की कल्पना किए हुए हैं वह सारी कल्पनाएं क्या है? अज्ञान से ही है। इन इस अज्ञान को जीतना बहुत ही क्या है? दुरंत। बड़ा आसान नहीं है, कहना में लगता है कि बड़ा आसान है लेकिन जीतना बहुत ही क्या है? कठिन है। लेकिन फिर भी मुनि लोग विचार करते हैं तो अज्ञान एक क्षण में नष्ट हो जाता है। चिंतन करो तो सारे वस्त्रों में क्या दिख जाए? सूत दिख जाए, बताओ उन वस्त्रों का आकर्षण क्या हो जाएगा? सारे शरीर में मांस के लोथड़े दिख जाए, क्या दिख जाए? सारे शरीर में क्या दिख जाए? अब जो मेरा मांस है वो मांस आपके मांस से अलग है नहीं है, तो ये जो मांस के लोथड़े को देखने की छूने की जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी नहीं है? या मांस का लोथड़ा ना दिखे तो पांच भूत का पुतला दिख जाए, शरीर क्या दिख जाए? पांच भूत का बना हुआ क्या दिख जाए? एक पुतला दिख जाए, कि शरीर को जो छूने का है, जो शरीर का आकर्षण है वह एक क्षण में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो उसको समाप्त करने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, लेकिन क्या करना है? संप्रेक्ष मांगे, अच्छी तरह से उसका क्या करो? प्रेक्षण करो, चिंतन करो। तो चिंतन करते ही एक क्षण में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो यह ज्ञान जो है वह क्या करती है कि ब्रह्म के अधीन है। क्या है? ब्रह्म के अधीन होने से उसी अज्ञान का नाम है माया, और जीव के आश्रित होने से उसी का नाम है अविद्या। कल इस पर चर्चा हुई, एक ही स्त्री है, राजा के साथ ब्याह दी जाए तो क्या हो जाती है? रानी। आज राजा के पास जितनी रानियां हो, रानी का उतना, राजा का उतना ही क्या माना जाता था? ऐश्वर्य। वही स्त्री यदि किसी नौकर के साथ हो गई तो क्या हो गई? नौकरानी है नहीं? स्त्री में कोई भेद है क्या? इन आश्रय अलग अलग हो गया तो उसके नाम भी क्या हो गए? अलग अलग हो गए। और जो चैतन्य और जड़ की जो ग्रंथि है, चैतन्य और जड़ दोनों को जो अलग अलग हम नहीं कर पा रहे हैं, इसी का नाम है चित्त। क्योंकि चित्त में ही चैतन्य की परछाई पड़ गई, तो चित्त भी चैतन्य जैसा दिख गया। तो चित्त को ही हमने क्या मान लिया? चैतन्य मान लिया, जबकि वास्तव में वह कौन है? जड़ है। तो दोनों को अलग अलग न कर पाना, इसका नाम क्या है? चित्त है। और जब तक मोक्ष न होवे न, तब तक हम चित्त को ही क्या समझे रहते हैं? चैतन्य समझे रहते हैं। आगे बताया, घट मठ आदि उपाधियों से घिरा हुआ आकाश जिसे अलग अलग नाम वाला हो जाता है, उसी प्रकार से अविद्या से घिरा हुआ शुद्ध चैतन्य ही जीव नाम वाला हो जाता है। जैसे घट मठ से घिरा हुआ जो आकाश है, उस आकाश में कोई भेद होता है क्या? आकाश के स्वरूप में कोई अंतर आता है क्या? उसी परिच्छिन्न परिच्छिन्न दिखता हुआ भी वह आकाश परिच्छिन्न नहीं होता। उसी प्रकार से अविद्या से ढका हुआ जो चैतन्य है, जिसका नाम क्या है? जीव है। जीव रूप में भी उसमें कोई विकार होता नहीं है, जीव रूप में भी उसमें कोई विकार होता ही नहीं है। इसको बताया वहां के गंगा जल है। क्या है? गंगा जल। एक नाली बह रही हो। क्या बह रही हो? नाली। अब सूर्य की परछाई नाली में पड़ गई, अथवा सूर्य की परछाई गंगा जल में पड़ गई, तो क्या परछाई कोई गंदी हो जाएगी क्या? तो या उस परछाई के पड़ने से क्या सूर्य गंदा हो जाएगा क्या? तो जिस चैतन्य की परछाई कहाँ है मालूम है ना? मनीषा पंचकम में सुना है ना? जब भगवान शंकराचार्य स्नान करके आ रहे थे मनीषा पंचकम, स्नान करके आ रहे थे तो उनमें थोड़ा अभिमान सा आ गया। क्या आया? अभिमान सा आया। तो उस समय भगवान शिव चार कुत्तों के साथ है रास्ते में खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि अफसर अफसर दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, क्योंकि तेरा कुत्ता छू गया ना तो मेरे को स्नान करना पड़ेगा। तो उस समय उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यह बताओ कि आप अन्नमय को अन्नमय से अलग करना चाहते हो अथवा चैतन्य को चैतन्य से, ये मेरे को बता दो। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, एक सोने का घड़ा होवे, एक मिट्टी का घड़ा होवे, क्या दोनों के भीतर जो आकाश है उस आकाश में कोई भेद है क्या? बोलो भाई, आकाश के स्वरूप में कोई, ये अवच्छेदवाद है। दूसरा प्रतिबिंबवाद बताया कि एक गंगा जल प्रवाहित हो रहा है, एक चांडाल के घर से नाली गुजर रही है, उसमें सूर्य की परछाई पड़े, तो चांडाल के घर नाली में सूर्य की परछाई पड़ने से क्या सूर्य गंदा हो जाएगा क्या? और गंगा जल में प्रतिबिंब पड़ने से क्या सूर्य पवित्र हो जाएगा क्या? तो किस दृष्टि से? प्रतिबिंबवाद की भी दृष्टि से, आभासवाद की भी दृष्टि से देखा जाए कि सूर्य में कोई अंतर नहीं, अब प्रतिबिंब भी नहीं अंतर आएगा। मैंने देखा बल्कि चांडा नाली में ना परछाई और साफ दिखती है, कभी कभी देखना नाली में परछाई क्या हो जाती है, काला काला जल होता है तो उसमें परछाई क्या हो जाती है, क्योंकि काला काला नीचे जम जाता है ना और ऊपर साफ पानी हो जाता है तो उसमें परछाई और क्लियर दिख जाती है, तो उस परछाई में भी कोई अंतर आने वाला है ही नहीं। तो जीव दृष्टि से भी विचार करो तो भी उस चैतन्य का कुछ बाल बांका होने वाला है ही नहीं, तो इसलिए वह चैतन्य कभी विकारी होता ही नहीं है। तो आप विकारी हो ही नहीं, जितना विकार पनाता है वह मात्र अज्ञान से आता है। आपके चित्त में जितना दुख आता है, जितना विकार आता है, उसका मूल कारण क्या है? कल मैंने इसको खूब बता दिया है आपको, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटा के होने से क्या हो गए? सुखी। और बेटी के होने से लक्ष्मी आई है महाराज जी, भवानी आई है गांव की भाषा में, दुखी। बेटी का ससुराल भेजते हो और अपनी इच्छा से भेजते हो, धन देवे करके भेजते हो, तो क्या हो जाते हो? सुखी। और लड़का ससुराल चला जाए तो क्यों दुखी हो गए भाई? दोनों में भेद किसने खड़ा किया? आपने ही खड़ा किया, ध्यान देना है। अच्छा, मतलब जितना भी दुख है उन सारे दुखों का कारण खोजा जाए तो क्या मिलता है? अज्ञान ही मिलता है। आपका किस कोई काम कर देवे या आपको ज्यादा काम करना पड़े तो दुखी होना चाहिए सुखी होना चाहिए? अरे भाई, आप 4 बजे जग करके काम करते हो और दूसरा आदमी 8 बजे तक सोता है तो दुखी कौन होता है, सोने वाला जगने वाला? बताओ, उसको सुखी होना तो नहीं होना चाहिए? बताओ, कि मैं किसी का एहसान नहीं लेता हूं, अपना काम अपने आप करता हूं, बल्कि दो चार का और काम कर देता हूं। हे परमात्मा, तू मेरे को ऐसा बल और दिए जाना, दिए देते रहना कि मैं 10 के लिए रोटी बनाने के लिए और सामर्थ्य रखूं, शक्ति रखूं। तो आपको सबका काम करके क्या होना चाहिए, लेकिन होते क्या है, अब क्या बताएं, दुखी होते। अच्छा, दूसरे का धन मिल जाए तो सुखी होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? अपना धन लुट जाए तो सही बताओ, सुखी होना चाहिए, क्योंकि अपना धन यदि चला गया लेकिन हमने दूसरे को ठगा तो नहीं ना, और धन गया तो हो सकता मेरा होता तो नहीं जाता, कभी न कभी किसी रूप से उसने कर्ज लिया होगा, अपना कर्ज निपट गया, आपका उधार का लिया हुआ पैसा जितना निपट जाए, जितना चुकता हो जाए, वो अच्छा है बुरा है बताओ? तो सुखी होना नहीं, दुखी होना चाहिए, लेकिन हम होते क्या है? तो जितना भी दुनिया में दुख है, उन सारे दुखों का कारण कौन है? अज्ञान है, सही बताऊं। और दुनिया में कहीं भी दुख लो, दुख खोज लो, कहीं दुख है? अच्छा, फोगा हो जाए खुशी होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? मेरे बता दो, एक फोगा हो जाए, फोगा जानते हो ना, खुशी होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? दुखी होना चाहिए, बहुत दर्द होता है, है? लेकिन शरीर के भीतर जितनी गंदगी भरी पड़ी है, ध्यान देना, वो गंदगी पहली तो जुकाम से निकलती है, दूसरी गंदगी उल्टी से निकल जाती है, तीसरी गंदगी लूज मोशन से निकल जाती है, और जब इन रास्तों से वो गंदगी न निकल पावे तो किस माध्यम से निकलती है? फोड़ा बन करके अंदर का सारा मल बाहर निकल जाता है। तो बताओ, यदि मल बाहर न निकला होता तो वो फोड़ा कहां होता? अंदर रहता गंदगी, और अंदर गंदगी रह करके कैंसर बन जाती। तो बताओ, कैंसर बनना अच्छा था या फोड़ा बन करके बाहर निकल जाना अच्छा था, बताओ? क्यों उमा बहन, क्या अच्छा था? सही बता रहा हूं। आज कभी कभी मैंने बड़ा चिंतन किया, आजकल जिसको देखो उसको कैंसर, कहीं न कहीं हर व्यक्ति कैंसर से ही मर रहा है। देखना, 100 में से कम तो 5 आदमी, 7 आदमी तो किससे मर रहा है आजकल? बुढ़ापे में पता चला महाराज जी, किसी का लीवर कैंसर, किसी का ब्लड कैंसर, किसी का लंग कैंसर, किसी का कहीं न कहीं कोई न कोई। हमें लगता है आखिर हो क्यों रहा है सब चीज? देखना, हमारे शरीर में कुछ गंदगी गई, जुखाम से बाहर निकलना चाहता है। देखो, जुखाम हुए तो कितनी गंदगी निकलती है, आप कभी देखना। लेकिन हमने तुरंत दवा खाई, उस जुखाम क्या किया, अंदर जो गंदगी बाहर निकल रही थी उसको क्या किया, दबा दिया। भोजन ज्यादा हो गया, कभी उल्टी आई, आपने तुरंत एक क्या किया, जबकि पहले के समय में उल्टी आए तो खूब पानी पी करके और निकलवा देता था, अंदर का जहर बाहर निकाल दिया। लूज मोशन हुआ, तुरंत क्या हुआ, पहले के गांव वाले लोग कहते भी थे साल में एक बार जुखाम होना ही चाहिए, कितना पॉल्यूशन अंदर जा रहा, सारा जुखाम के माध्यम से फेफड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। और साल में एक बार लूज मोशन भी होना चाहिए, पूरा पेट क्या हो जाता है। अब बताओ, होता है क्या? होना शुरू नहीं हुआ बेचारे को दवाई, तुरंत उसको क्या किया, रोका। और जब रोका तो वो जहर कहां बनेगा, और कोई फोड़ा फुंसी निकल गया, तुरंत स्टीकर चिपकाया, अंदर दब जाए। तो देखो भाई, जिसको कभी आप देखना, पेड़ की जड़ है, इधर से रोकोगे तो दूसरी तरफ जगह फैल जाएगी, तीसरी तरफ फैल जाएगी। तो जो रोग था, जो ऊपर निकल रहा था, उस रोग को कहां किया, नीचे चला गया, और नीचे जाना ही कैंसर है। अंदर का फोड़ा का नाम ही कैंसर है और कुछ नहीं है। कैंसर क्या है? अंदर जो फोड़ा होता है उसी का नाम क्या है, कैंसर है। और क्या है, और कोई कैंसर थोड़ी बीमारी है। और ऊपर का फोड़ा फूट गया तो जहर बाहर निकल जाता है, अंदर फूट गया तो जहर कहां फैल जाता है, भीतर ही। वही आपकी मौत का क्या बन जाता है, कारण बनता है। बताओ, फोड़ा फुंसी थोड़ी बहुत बीमारियां आती रहे, वो बताओ अच्छा है बुरा है? तो सुखी होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, मेरे बता दो। फिर भी कहा, नहीं महाराज जी, ये बीमारियां तो इतनी लगातार आती जा रही, क्या करें, जब से पैदा हुए हैं तब से बीमार ही बीमार हैं, नहीं लगता। अब एक है भाई, देखो बंबई मकान मैं खरीदना चाह रहा हूं, कितने का मिलेगा? अब करोगे एक साथ इकट्ठा करो तो दे पाओगे क्या? यदि किस्त बन जाए तो ठीक है, नहीं ठीक है? किस्त बन जाए 10,000 15,000 रुपए महीने की 20 साल की, तो चल जाएगा नहीं चल जाएगा? और एक करोड़ एक साथ दो तो हो सकता है दिक्कत भी हो जाए, इनकम टैक्स वाला छापा मार दे, एक करोड़ कहां से आए तुम्हारे पास पहले बताओ। अब देखना, ऐसे जीवन में जो भोग आपको भोगने हैं वो भोग चाहे एक साथ भोग लो और चाहे किस्तों में भुगतान कर लो, बताओ कौन सा भुगतान अच्छा है? बोलो भाई, किस्त वाला है कि एक साथ वाला अच्छा है? हमने देखा है कई लोग कहते हैं कि महाराज जी वो क्या हम तो कभी जुखाम नहीं होता, मुझे तो कभी बुखार नहीं होता, पता नहीं तुम रोज नाक बहाते रहते हो, रोज जुखाम हुआ रहता है। लेकिन जब कभी वो बीमार होता है तो आईसीयू के पहले वापस नहीं आता है, पक्का जान लेना, कम से कम 15 दिन वहां रह के आता है। और जो रोज बीमार रहता है कभी कभी कुछ न कुछ लगा ही रहता है, उसको कभी आईसीयू में जाने की नौबत आती नहीं है, पक्का जान लेना। क्योंकि या तो तुम एक साथ भुगतान कर दो जितना भुगतान करना है, अथवा उस भुगतान को कहां दे दो, किस्तों में दे दो। तो किस्त वाला अच्छा है कि एक साथ वाला अच्छा है? अब आप ज्यादा समझदार हो, मैं नहीं बताऊंगा। सामर्थ्य हो भाई तो एक साथ वाला दे दो, लेकिन हमें तो लगता है कि छोटा मोटा अच्छा है, किस्त वाला अच्छा है। हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम एक साथ इतने दुखों को क्या करें, झेल सके। यदि सामर्थ हो तो एक साथ झेलो, यदि सामर्थ नहीं है तो क्या कर दो, किस्तों में थोड़ा बहुत निपटाते रहो। तो ये मैंने देखा भी है, जो रोज बीमार रहता है उसको कभी बहुत बड़ी बीमारी नहीं आती है, पक्का देख लेना आप संसार में। जो रोज कभी न कभी कुछ लगा ही रहता है उसके यहां कभी बड़ी बीमारी आएगी नहीं। और जो कभी बीमार नहीं होता है, अचानक पता चलता है अरे उसको तो ये बीमारी थी, तो ये भी बड़ा प्रकृति का एक क्या है, नियम है, संसार का एक क्या है, नेचर है। चलो हम लोग चलते हैं। कल एक प्रश्न आया था, महाराज जी ननु कथम आवरणम स्यात अज्ञान ब्राह्मणो विशुद्धस्य। जो विशुद्ध ब्रह्म है, कौन सा ब्रह्म है, एकदम शुद्ध है, उस ब्रह्म के ऊपर ये अज्ञान का आवरण कहां से आ गया? क्या इस अज्ञान का आवरण कहां से आ गया, क्यों नहीं आ सकता है? तो कहा भाई कैसे आएगा, सूर्यस्य यू तमिस्सम रात्रि भवम, कहते रात्रि में उत्पन्न हुआ जो तमिस्र है, घना अंधकार है, वह अज्ञान अंधकार क्या सूर्य के ऊपर आ सकता है, क्या सूर्य को ढक सकता है क्या? तो हम कहते हैं वो आत्मा स्वयं प्रकाश रूप है। आत्मा कैसा है, स्वयं प्रकाश रूप है, तो उस आत्मा के ऊपर वह ज्ञान स्वरूप है। क्या बोलते हैं, वह क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वह ब्रह्म क्या है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और क्या है, आनंद स्वरूप है। तो जो ज्ञान स्वरूप है उसके ऊपर ये अज्ञान कहां से आ जाएगा? दो विपरीत विरोधी चीजें एक साथ तो रह नहीं सकती हैं, ये दोनों कैसे आ गई ये मेरे बता दो। बल्कि सूर्य के उदय हो जाने पर अंधकार क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अंधकार जो है सूर्य को ढकने में समर्थ नहीं हो सकता है, उसी प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा को अज्ञान कैसे ढक सकता है, यह मेरे मन में क्या हो रहा है, संशय हो रहा है। संशय समझ में आ रहा है, ध्यान देना, इसको भी ध्यान देना। जो शुद्ध ब्रह्म है, ध्यान देना, जो शुद्ध ब्रह्म है उसका न ज्ञान से कोई विरोध है न अज्ञान से कोई विरोध है, बल्कि शुद्ध ब्रह्म ज्ञान और अज्ञान दोनों को प्रकाशित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सूर्य का किसी के साथ कोई विरोध है क्या? उस सूर्य की सत्ता से आपकी वाटिका भी प्रकाशित होती है, और सूर्य की शक्ति से कूड़ादान भी प्रकाशित हो रहा है। सूर्य का किसी के साथ कोई विरोध है? लेकिन ध्यान, सूर्य की ही किरण को यदि किसी लेंस से गुजार दो, क्या करो, और लेंस से गुजारने के बाद क्या करना है, एकदम स्थिर रखे रहना, हिलाना डुलाना नहीं, तो नीचे जो कूड़ादान है उसमें आग लगकर को जल जाएगा पक्का। ऐसे ब्रह्म जो है, ध्यान देना कौन है, जो शुद्ध ब्रह्म है, वह ब्रह्म यदि क्या है, ब्रह्माकार वृत्ति बन जाए। अभी हमारी वृत्ति कैसी बनती है, विषयाकार। हमारी वृत्ति कैसी बन रही है बताओ। अरे भाई कभी अब विषय एक है कनेक है, तो हमारी वृत्ति क्या रहती है, कभी इधर गई, कभी लाल कपड़ा देखा, कभी कुर्सी देखा, कभी माइक देखा, कभी एक पुस्तक देखा, कभी हर पल हमारी वृत्ति क्या रहती है। अभी ध्यान में करने बैठो तो 24 घंटे में कितने विचार आएंगे भगवान जाने, और जितने विचार आ गए ना उतने आकार की हमारी क्या बन गई, वृत्ति बन गई। तो विषयाकार वृत्ति न बनाकर के कौन सी वृत्ति बना लो, ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ। कौन सी वृत्ति, ध्यान देना, कौन सी वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति बन गई। तो जो ब्रह्माकार वृत्ति होगी ना, उस वृत्ति में सामान्य ब्रह्म की जो शक्ति है उस शक्ति से ज्यादा शक्ति आ जाती है, और वो शक्ति उस अज्ञान को क्या करेगी, नष्ट कर देगी। अज्ञान को नष्ट करके आपका अपना स्वरूप प्रकाशित कर देगी, नहीं तो अज्ञान को भी अपने ऊपर सत्ता दे रहा है। जैसे एक उदाहरण ले लो साइंस का, किसका उदाहरण, साइंस का। देखो ब्रह्म है, मान लो क्या है, ब्रह्म है, ध्यान देना, ब्रह्म के ऊपर क्या है, मैंने बताया अज्ञान है, ब्रह्म के ऊपर क्या है, कल्पित अज्ञान है। उस अज्ञान से मन पैदा हुआ, मन से इंद्रियां पैदा हुई, इंद्रियों से विषयों का प्रकाश जा रहा है, यही तो क्रम है ना, क्रम तो यही है ना। अब क्या किया कि मन को कलई कर दिया, मन को विषयों की तरफ न ले जाओ, मन को क्या कर दो, पॉलिश कर दो। तो जो प्रकाश निकला ब्रह्म से, अज्ञान के माध्यम से मन में गया, तो प्रकाश क्या करेगा, वापस आएगा। तो जो प्रकाश वापस आएगा उसमें जो प्रकाश गया है उससे ज्यादा ताकत होगी, कम ताकत होगी, बोलो भाई। भाई प्रतिबिंब में ज्यादा शक्ति होती मालूम है, सामान्य सूर्य के प्रकाश में आपका मुंह नहीं चमकेगा, लेकिन दर्पण के माध्यम से फोकस डाले तो आंखें जलना शुरू हो जाती है, चेहरे में क्या जाती है, मतलब गरम, वो किरणें गरम लगती हैं। तो ऐसे ही मन से जो रिफ्लेक्टेड वृत्ति आएगी, प्रकाश आएगी, उस प्रकाश में विशेष सामर्थ्य होने से वो क्या हो जाएगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अज्ञान के नष्ट होते ही आपका अपना स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। एक उदाहरण देख लो, सामने शीशा लगा हुआ है, अभी आंख से प्रकाश निकलता है, शीशे के माध्यम से कहां चला जाता है, बाहर, बाहर में पेड़ आदि सब दिख रहा है। यदि उसी शीशे पे वो पॉलिश लगा दो, क्या लगा दिया, तो अब आंख से प्रकाश गया, कहां गया, शीशे से प्रकाश जाके फिर कहां आएगा, तो वापस आएगा, फिर किसकी परछाई पड़ जाएगी, आपका अपना स्वरूप दिख जाएगा। क्या दिखेगा, आपका अपना स्वरूप दिखा कि नहीं दिखा, और जब तक पॉलिश नहीं लगा हुआ है तब तक हमें क्या दिखता था, विषय दिखता है। तो मन को विषयों से हटा लो तो आपका अपना स्वरूप क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। लेकिन फिर भी संशय है कि कैसे आवरण हुआ, कैसे आवरण हुआ, इसको बता रहे हैं 108वें श्लोक में। दिनकर किरण उत्पन्न मेघई आच्छाद्यते सूर्य न खलु दिनस्य दिनत्वम तैर विकृतम सांद्र संघात अज्ञाने। एक उदाहरण है, दृष्टांत है, अब दृष्टांत समझा रहे हैं। अज्ञानेन तथा आत्मा शुद्धो अप्याच्छाद्यते सुचिरम न परंतु लोक सिद्ध प्राणीसु तत्चेतना शक्ति। यथा माने जिस प्रकार से कहते दिनकर किरण उत्पन्न ही है, दिनकर माने सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुआ जो मेघ है, बादल है, बादल कहां से पैदा होता है, बोला भाई सूर्य की किरणों से जो जल वाष्पित होता जाता है वही क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। तो जो बादल है वह कहां से पैदा हुआ, सूर्य की किरणों से ही, और वही बादल स्वयं सूर्य को क्या कर लेता है, ढक लेता, नहीं ढक लेता, कहते हैं कि सांद्र संघात ही उन बादलों के समूह से वह बादल सूर्य क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, ढक जाता है। लेकिन ढक जाने पर भी क्या दिन की दिनत्व में कोई अंतर होता है क्या? देखो बादल की उत्पत्ति कहां से हो रही है? सूर्य की किरणों से हो रही है, और सूर्य की किरणों से उत्पन्न, मतलब सूर्य की सत्ता से बादल की सत्ता है। देखा जाए किसके ऊपर सत्ता है? सूर्य की किरणों से ही किसकी सत्ता है? बादल की सत्ता है। लेकिन वही बादल क्या करता है? जो जिससे पैदा हुआ उसी को क्या कर लेता है? ढक लेता है। लेकिन ढक लेने पर भी दिन के दिनत्व में क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? दिन को क्या कोई रात कहने लग जाता है क्या? दिन तो क्या रहेगा? दिन ही रहेगा। दूसरा उदाहरण ले तो नहीं समझ में आया? तो जल है, जल से उत्पन्न क्या है? काई है। काई बोलते ना शैवाल, क्या शैवाल बोलते ना? हाँ काई, देखा होगा। अब जल से उत्पन्न हुई, लेकिन जल को ही क्या करती है? ढक लेती है। और ढक लेने पर भी क्या जल के जलत्व में कोई अंतर पड़ता है क्या? गांव गांव में जो रास्ते में चलने वाले पथिक होते हैं ना, वो काई को क्या करते हैं? साइड करके चुल्लू से क्या कर लेते हैं? प्यास लगती तो पानी भी पी लेते हैं, नहीं पी लेते हैं। इसी प्रकार से जो शुद्ध आत्मा है, कौन है? तथा शुद्ध आत्मा। उसी प्रकार से शुद्ध आत्मा चिरकाल तक अज्ञान से ढका रहता है, लेकिन प्राणियों के भीतर जो चेतना शक्ति है वह उसका आच्छादन कर नहीं सकती। भले ढका हुआ है, इन ढका रहने पर भी, उदाहरण तो समझ में आ गया ना, सूर्य से उत्पन्न बादल जैसे सूर्य को ढक लेता है, जल से उत्पन्न काई जैसे जल को ढक लेती है, वैसे उस आत्मा के आश्रय पर ही रहने वाला जो अज्ञान है उस अज्ञान को क्या कर लेता है? ढक लेता है। लेकिन ढक लेने पर भी वह उसका आच्छादन भले कर लेवे, लेकिन फिर भी उसकी जो चेतना शक्ति है, लोक प्रसिद्ध जो चेतना शक्ति है, उसका आच्छादन कर, बल्कि किसका आच्छादन करती है? आनंद रूप का भले आच्छादन कर लेवे, लेकिन क्रिया रूप से फिर भी वह दिखाई देती रहेगी। थोड़ा सा ध्यान देना है। आत्मा के तीन स्वरूप बताए हम लोग, क्या बताए? सत, चित और आनंद, ठीक है ना? जब अज्ञान थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, और अज्ञान जानते हैं माया का काम है, उसमें क्यों कौन से गुण है? सत, रज और तम। तो जब सत्य प्रधान अज्ञान है, कौन सा प्रधान है? सत्य प्रधान अज्ञान है, तो उस अवस्था में जो आत्मा है सुख रूप में दिखता है। उसके व्यक्ति किस रूप में हो जाती है? सुख रूप में व्यक्ति हो जाती है। किसकी? जब सत्य प्रधान कौन रहेगा? अज्ञान रहेगा। और जब रजोगुण प्रधान रहेगा, कौन? अविद्या, अज्ञान। तो उसमें आत्मा की व्यक्ति किस रूप में हो जाएगी? बोलो भाई, क्रिया रूप में। किस रूप में हो जाएगी? क्रिया रूप में। अब वही जब अज्ञान तम प्रधान रहेगा, तो उसी आत्मा की व्यक्ति किस रूप में हो जाएगी? सत्ता रूप में हो जाएगी। लेकिन भले ढका हुआ होवे, ढका हुआ होने पर भी उस आत्मा की सत्ता का, वह उस आत्मा की शक्ति का वह आच्छादन करने में समर्थ हो ही नहीं सकती। उदाहरण दो समझ लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक अग्नि है, क्या है? अग्नि। अग्नि का स्वरूप क्या है? प्रकाश और उष्णता, यही इतने। अग्नि का स्वरूप क्या है? प्रकाश रूपता और उष्णता। अग्नि दो ही काम करती है, या गर्मी पैदा करेगी अथवा क्या करेगी। तो देखना, कहीं कहीं प्रकाश ज्यादा होगा, उष्णता क्या होगी? कम होगी। और कहीं कहीं उष्णता ज्यादा होगी और प्रकाश रूपता होता ही नहीं होता। जो गैस है आपकी, उसमें तो आग तो बहुत तेज है, लेकिन उस गैस की लाइट में, आग में क्या अध्ययन कर सकते हो क्या? तो वहां किसकी सत्ता ज्यादा है? उस गैस की लाइट में उष्णता अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन प्रकाश रूपता कम है, बहुत कम है। अरे आपकी एक चिमनी है, चिमनी माने वो धिवरी लालटेन है, उस लालटेन में आग कितना है, छोटी सी आग है, नहीं उसमें खिचड़ी बनाओ बन जाएगी क्या, लेकिन प्रकाश है पूरे कमरे को प्रकाशित कर दे रहा है, नहीं दे रहा है, लेकिन वही गैस की लाइट कितनी ज्यादा है बताओ, गैस में अग्नि कितनी ज्यादा है, लेकिन उस अग्नि में पूरा कमरा का रसोई भी नहीं प्रकाशित होती, सच बताओ। तो ध्यान, अग्नि दोनों है, कौन सी, भिवरी की अथवा लालटेन की लाइट में भी क्या है, अग्नि है, और गैस की भी लाइट में क्या है, चूल्हे की आग में भी क्या है, अग्नि है, लेकिन कहीं अग्नि का प्रकाश रूप में अव्यक्त हो रहा है, कहीं उस अग्नि का उष्मा के रूप में अव्यक्त हो रहा है, लेकिन किसी भी रूप में अव्यक्त हो गए तो उसके व्यक्ति है कि नहीं है बताओ, क्यों भाई, तो आपकी अव्यक्ति, आप माने आप आत्मा की व्यक्ति, आप क्या हो, आत्मा ही हो, परमात्मा हो, ब्रह्म हो, उस ब्रह्म की व्यक्ति कहीं कहीं किस रूप में हो रही है, सत्ता रूप में हो रही है, कहीं कहीं किस रूप में हो रही है, क्रिया रूप में हो रही है, कहीं कहीं आपकी व्यक्ति किस रूप में हो रही है, आनंद रूप में, सुख रूप में हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ आप अनव्यक्त कब हुए मेरे को बता दो, चलो आपकी सत्ता का कभी अभाव हुआ है क्या, ध्यानस्थ हो जाओ, देखो एकदम अंतकरण शांत हो जाए तो कितना आनंद मिला, तो आनंद भी किसका है, आत्मा ही का है। अभी जब रजोगुण आ गया, एक काम करो यहां करो, दौड़ भागो, आंखें चंचल हो रही हैं, कान वो कर रहा है, हाथ पांव चल रहे हैं, तो उसी आत्मा की शक्ति से कर रहे हैं, तो वो आत्मा उस रूप में किस रूप में व्यक्त हो रहा है, क्रिया रूप में व्यक्त हो रहा है। वही आत्मा जब एकदम सो जाते हो, तमह प्रधान हो जाते हो, तो किस रूप में व्यक्त हो जाता है, सत्ता रूप में, उसमें मैं हूं की सत्ता रहती है, और कुछ सत्ता जैसे लकड़ी में, पत्थर में, वृक्ष में, हम किस रूप में हूं, बोलो भाई, सत्ता रूप में, किस रूप में हूं, पशु पक्षी चीज पतंगों में उगते हुए चलते फिरते देख करके हम किस रूप में है, क्रिया रूप में, किस रूप में है, क्रिया रूप में। और जब योगियों के भीतर हमारी सत्ता किस रूप में व्यक्त हो रही है, आनंद रूप में, योगियों के भीतर किस रूप में व्यक्त हो रही है, आनंद रूप में व्यक्त हो रही है। तो किसी भी रूप में वो दिखे तो किसकी सत्ता दिख रही है, तो बताओ आपने अपने आंखों देखा ही नहीं देखा है, मेरे बता दो क्यों, अपने आप को इन सब रूपों में देखा ही नहीं देखा, ये देख लो यही ज्ञान है और क्या है, अज्ञानेन तथा आत्मा, उसी प्रकार से आत्मा शुद्धो भी, शुद्ध होता हुआ भी अज्ञान से लंबे काल तक ढका हुआ है, लंबे काल माने जब तक मोक्ष न होवे, लंबे काल माने क्या हुआ, जब तक मोक्ष न होवे तब तक वह क्या है, ढका हुआ है, और जिस काल में मोक्ष हो जाए तब ज्ञान और अज्ञान का सारा कार्य ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। न परंत लोक सिद्धा प्राणीस तत्चेतना शक्ति ही, वह अज्ञान संसार में सिद्ध जो चेतना शक्ति है, उस चेतना शक्ति को आच्छादन करने में समर्थ हो ही नहीं सकती, वह चेतना शक्ति के रूप में तो अभी अव्यक्त हो ही रही है, ढक सकती क्या। अरे भाई देखो, सूर्य मैंने बताया था, सूर्य बहुत बड़ा होगा है नहीं, अब बादल एकाध किलोमीटर नहीं होगा, तो यदि सूर्य को पूरा का पूरा बादल ढक लेता तो बादल दिखाई देता क्या, तो बादल जो दिख रहा है वो किसके प्रकाश से दिख रहा है, सूर्य के प्रकाश दिख रहा है, पूरा पूरा नहीं, तो अज्ञान जो है उस शुद्ध ब्रह्म के किसी एक कोने में है, तो पूरा पूरा ढके ऐसा नहीं हो सकता है, तो जो नहीं ढका हुआ है उस अंश से वह अज्ञान क्या है, किसी न किसी रूप में दिख रहा है, चाहे क्रिया रूप में, चाहे सत्ता रूप में, चाहे आनंद के रूप में, उस आत्मा के व्यक्ति तो अब भी हो ही रही है, उस आत्मा का अनव्यक्त तो किसी अवस्था में होता ही नहीं। लेकिन ध्यान देना, एक बार क्या करना है, एक बार अज्ञान और अज्ञान के कार्य को हटा दो, क्या कर लो, एक बार अज्ञान और अज्ञान के कार्य को हटा दो और उसके स्वरूप का ज्ञान कर लो, और फिर अज्ञान और अज्ञान का कार्य पड़ा भी रहेगा तो भी उसके स्वरूप का क्या होगा? अज्ञान कभी नहीं होगा, मतलब उसके स्वरूप का अभाव कभी नहीं होगा, वो हर अवस्था में वो बना ही रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बच्चा ने सुना था कि फिल्म में जितनी पिक्चरें चलती हैं ना, वह पर्दे के ऊपर हैं। किसके ऊपर हैं? पर्दे के ऊपर हैं। कितनी? जितनी फिल्में चलती हैं। लेकिन जब भी बच्चा गया उसको पर्दा दिखा नहीं, पर्दा उसको दिखा नहीं। उसने अपनी माँ से कहा, माँ एक बार मेरे को पर्दा दिखा दो, मेरे को फिल्म नहीं देखना है। क्या देखना है? पर्दा। सब लोग कहते हैं पर्दा के ऊपर सब चलती है, हमने पर्दा देखा ही नहीं, पर्दा तो दिखा दो। तो माँ गई और किसी जाम में फंस गई बेचारी, और जब तक हॉल में पहुंची तब तक फिल्म शुरू हो चुकी थी। अब बच्चा फिल्म तो देखने नहीं गया था ना, क्या देखने गया था? पर्दा। अब बार बार माँ से कहता, मम्मी वो पर्दा कौन सा है? तब माँ उंगली करती है, किधर? ये सामने जो दिख रहा हो क्या है? और सामने जहां पर कर रहे उंगली कहां दिखती है? तस्वीर। क्या संग्रहालय पर्दे हैं? वृक्ष पर्दा है, डंडा पर्दा है, माला पर्दा है, क्या पर्दा है बताओ? लाल रंग पर्दा है, हरा रंग पर्दा है, नीला रंग पर्दा है। अब बताओ माँ पर्दे की व्याख्या करना भी चाहे, पर्दे के बारे में समझाना भी चाहे, तो कोई उपाय है क्या? माँ बार बार करे, बेटा पर्दा सफेद रंग का होता है, लेकिन बच्चे को विश्वास है? अरे सफेद तो किसी कोने में दिख ही नहीं रहा है। सही बताऊ, बचपने में हम भी आपको बताऊं, बचपने के बाद में बता रहा हूं, लाल कपड़ा होता था ना तो हम समझते थे लाल कपास से बना हुआ है, पीला कपड़ा होता था ना तो मैं क्या समझता था? ये पीला कपास होगा, काला कपास होगा। जबकि जब तक हमने वस्त्र को सफेद नहीं देखा, मान लो सफेद वस्त्र हमने नहीं देखा हो, तो क्या कभी कोई बच्चा बुद्धा सफेद रंग की कपास होती है ऐसी कल्पना कर सकता है क्या? वह क्या कल्पना करेगा? अलग अलग रंग की ही कल्पना करेगा ना, कपास होगा। जैसे लाल मूली होती है, नहीं होती है, सफेद मूली होती है। तो ऐसे भाई हमने भी सोचा लाल कपास होती होगी, वो पीली कपास होती होगी, काली कपास होती है, लेकिन सफेद की कभी कल्पना हो ही नहीं सकती क्योंकि सफेद रंग मैंने। अब माँ बेचारी करावे तो क्या करावे बताओ? बोलो, सारी तस्वीरें डिलीट कर दो, इंटरवल होने दो, सारी तस्वीरें क्या हो गई? गायब हो गई। अब गायब जैसी तस्वीर हो गई तो क्या दिख गया उसको? उसको अमान का देख बेटा वो पर्दा है। अब वो जैसे पर्दा देख लिया, इसके ऊपर कोई तस्वीर बने अथवा न बने, उसको हर पल क्या दिख रहा है? बोलो भाई क्या दिख रहा है? पर्दा ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब बताओ तस्वीर बने भी तो क्या फर्क पड़ता है? वो जान गया है कि सारी तस्वीरें पर्दे के ऊपर आती और जाती हैं, लेकिन पर्दे का बाल बांका होने वाला। तो ऐसे ही एक बार इस ब्रह्म सत्ता का अनुभव कर लो तो जगत रूप तस्वीर बने अथवा जगत रूप तस्वीर क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। हर पल आपको वही ब्रह्मानंद की प्राप्ति, फिर जगत आपको दुख नहीं देगा। अभी आपको जगत क्या देता है? दुख देता है, विक्षिप्तता देता है, अशांति देता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने उस पर्दे को देखा नहीं है। अब पर्दे को जान लोगे ना भाई, समुद्र के ऊपर कितनी तरंगे उठे लय हो जाएं, समुद्र को क्या चिंता होगी मेरे बता दो? और हमें भी चिंता नहीं होगी क्योंकि जानता हूं ये समुद्र के ऊपर तरंगे उठती हैं और नष्ट होती, इनका ये स्वभाव है। तो मेरे अपने स्वरूप के ऊपर जगत अनेक रूप में दिखता है, जगत का क्या है? स्वभाव है। तो जगत रहे अथवा जगत न रहे, जगत के रहने न रहने पर भी मेरे अपने स्वरूप में कोई अंतर आता ही नहीं है। ये जिस क्षण आपको ज्ञान हो गया फिर जगत के किसी भी प्रभाव का कोई वो पड़ेगा नहीं। आ गया समझ में? अब आगे हम लोग कल विचार करेंगे, लेकिन विचार है कि अब जो पर्दा देखना है ना, तो पर्दा देखने के लिए ऊपर की तस्वीर हटानी पड़ेगी। तो कौन कौन सी तस्वीर हटानी पड़ेगी? अज्ञान और अज्ञान का जो कार्य है उसको हटाए बिना हमें ज्ञान होने वाला है ही नहीं। अज्ञान माने हुआ जैसे एक वस्त्र है, क्या है? वस्त्र। वस्त्र के ऊपर एक पले वो चढ़ाते हैं क्या, जो टाइट होता है कपड़ा, मावड़ चलाते मावड़, इसको क्या करते हैं? स्टार्च, आपकी भाषा में स्टार्च, चावल का मावड़ या कुछ जैसे वो आरारोट, घोल करके इसको क्या कर देते हैं, टाइट कर देते, वो अज्ञान हो गया, ब्रह्म हो गया कपड़ा, उसके ऊपर क्या हुआ स्टार्च, क्या हुआ अज्ञान। और इसके ऊपर जो पेंटिंग हमने, वो पेंटिंग नहीं अभी लकीरें खींच दी हैं, वो हो गया सूक्ष्म शरीर। लकीरों में हमने क्या किया, पेंटिंग भर दिया, वो क्या हो गया स्थूल शरीर। अब हमें एक एक को हटाना है, किसको हटाना है इससे विचार हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे, लेकिन बिना हटाए उस ब्रह्म का बोध होने वाला है ही नहीं। किसको हटाना है इस पे, हटाने के लिए कौन सा साधन इस्तेमाल करना है, ये भी है भाई। दाग पड़ जाए तो किस दाग से कौन सा वो कपड़ा, वो किस केमिकल को लगाने से कौन सा दाग छूटेगा, ये आप लोग ज्यादा ज्ञान है। नहीं तो लगाते रहो मिट्टी का तेल, दाग छूटने वाला, तो हम ये भी तरीका बता देंगे कौन सा तरीका। तो दाग, दाग माने जो हमारे कपड़े पे लगा हुआ है, कौन से कपड़े पे, आत्मा के ऊपर जो दाग लगा हुआ है, उस दाग को छुड़ाने का तरीका क्या है, कौन कौन से दाग लगे हुए हैं, इस पे चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।